देवता परिचय अग्नि। वैदिक देवताओं में अग्नि अत्यंत महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। अग्नि के संबंध में कतिपय मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। एक, ऋग्वेद में स्थान ऋग संहिता का प्रथम मंत्र अग्नि देवता को ही संबोधित किया गया है तथा प्रथम पाद भी अग्निम ही है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि प्रधान देवता है। अग्नि का अर्थ है वह देव जो यज्ञ में प्रदान की गई हवि को देवताओं तक पहुंचाता है। ऋग्वेद के तीन प्रमुख देवताओं में अग्नि का द्वितीय स्थान है। ऋग्वेद के 200 संपूर्ण सूक्तों के अतिरिक्त अन्य अनेक सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ अग्नि की स्तुति की गई है। प्रायः ऋग्वेद के सभी मंडलों में प्रारंभिक सूक्त अग्नि को ही संबोधित किए गए हैं। दो, उत्पत्ति। अप उषस त्वष्टा द्यावा पृथ्वी और विष्णु को अग्नि का उद्भावक कहा गया है। वह दो अरणियों के संघर्ष से उत्पन्न होता है। अरणियों में ऊपर वाली अरणी को पति और नीचे वाली अरणी को पत्नी कहा गया है, जिनके संयोग से शिशुवत अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नि को 10 युवतियों से उत्पन्न कहा गया है। ये 10 युवतियां मनुष्य के हाथों की 10 अंगुलियां हैं। अग्नि को सहसह पुत्र भी कहा गया है, क्योंकि अग्नि को उत्पन्न करने के लिए सहस शक्ति भी लगानी पड़ती है। 3, स्वरूप। अग्नि का धर्म है प्रकाशित होना। वह अंगारमय है, प्रकाशमय है। ऋग्वेद में अग्नि को घृत पृष्ठ, घृत प्रतीक, घृत लोम, मद्रजिह्व, शौचिष कोश आदि भी कहा गया है। वे भास्वर ज्वालाओं वाले हैं, उनका वर्ण भास्वर है। वे हिरण्य रूप हैं, वे सूर्य की भांति चमकते हैं। उनकी प्रभा उषा सूर्य एवं विद्युत जैसी है। 4, कार्य। अग्नि यज्ञ में देवताओं को बुलाता है। वह उत्तम धनादिकों का प्रदाता है। अग्नि के माध्यम से यजमान को पुष्टि, यश और वीर पौत्रादि की प्राप्ति होती है। यह यज्ञों का रक्षक और सत्य का प्रकाशक है। कर्मफल को प्रदान करना भी अग्नि का ही कर्म है। अग्नि स्वयं प्रकाशवान होने से रात्रि को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए कल्याण भावना रखता है, उसी प्रकार अग्नि भी कल्याणकारी है। अग्नि यज्ञ के प्रत्येक रहस्य को जानता है, इसलिए जात वेदस भी कहा गया है। जिस प्रकार ऋतु और युद्ध कर्म इंद्र के अधीन है, उसी प्रकार आर्यों के सारे गृहकृत अग्नि के अधीन है। अग्नि के संबंध में भी यह भी कहा गया है कि जिस यज्ञ कर्म का साक्षी अग्नि होता है, केवल उसका ही फल देवताओं के पास पहुँचता है। 5, प्राकृतिक आधार। अग्नि का प्राकृतिक आधार स्पष्ट है। हमारे सम्मुख अग्नि के मुख्यतः तीन रूप दृष्टिगोचर होते हैं। काठों से उत्पन्न दावाग्नि, जलों से उत्पन्न बाढ़वाग्नि एवं द्यूलोक से उत्पन्न वैद्युताग्नि। ये अग्नि के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। यद्यपि जलों के संघर्षण से अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती, तथापि वड़वाग्नि को ही संभवतः अब से प्रादुर्भूत अग्नि माना गया है। आधुनिक युग में विद्युत शक्ति की उत्पत्ति भी जलों के द्वारा की जाती है। बादलों के पारस्परिक टकराव से उत्पन्न आकाशीय विद्युत भी तो जलों से ही उत्पन्न मानी जा सकती है, क्योंकि बादल भी जलों के ही रूप हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि वैदिक अग्नि देवता का प्राकृतिक आधार भी अग्नि के उपर्युक्त रूप ही है। 6, मानव जीवन से संबंध। अग्नि का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। संपूर्ण गृहकृत्य के लिए अग्नि की महती आवश्यकता है। प्रत्येक घर में उसका निवास है। अग्नि ही एक ऐसा देवता है जो मनुष्यों के जन्म से मृत्यु पर्यंत उसका साथ देता है। अग्नि के माध्यम से ही इस संसार में प्रकाश का जन्म हुआ है। वैदिक युग में ऋषियों के समक्ष अग्नि की उपादेयता सर्वाधिक सिद्ध हुई। इसका मुख्य कारण यह है कि अग्नि की सहायता से ही यज्ञानुष्ठान, भोजन पाक तथा शीत इत्यादि से रक्षा हो जाती है। इसलिए वैदिक ऋषि अग्निदेव से अपने उन्नति एवं कल्याण की प्रार्थना करता है। सवित्री अथवा सविता। ऋग्वेद के द्विस्थानी देवों में सविता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद के 11 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। कुछ अन्य सूक्तों में कतिपय अन्य देवताओं के साथ ही सविता का स्तवन प्राप्त होता है। सविता शब्द सु धातु से त्रिश प्रत्यय लगने पर निष्पन्न होता है। सु धातु प्रेरित करने के अर्थ में होता है, अतः इस शब्द का अर्थ हुआ प्रेरक। सविता के संबंध में कतिपय मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। स्वरूप। सविता स्वर्णमय देव हैं। इनके हाथ जिह्वा नेत्र सभी स्वर्णिम हैं। इनके केश पीले रंग के हैं। ये स्वर्ण की कील वाले रथ पर चलते हैं। इनका रथ भी स्वर्ण जटित है। इनके रथ को शुभ्र वर्ण वाले दो चमकीले अश्व खींचते हैं। इनके शरीर से निकलने वाली किरणें भी विचित्र रंगों से युक्त हैं। कार्य: अंधकारमय लोक से आते हुए सविता देव देवों एवं मनुष्यों को अपने कार्यों से युक्त कराते हैं। रोगों को नष्ट करते हैं। सूर्य का पथ प्रदर्शन करते हैं। सबको विविध रूपों में देखने वाले सविता देव द्यूलोक एवं पृथ्वीलोक के मध्यवर्ती स्थान में विचरण करते हैं। राक्षसों एवं मायावियों को नष्ट करते हुए सविता देव स्थित होते हैं। सविता देव जीवधारियों को मार्ग प्रदर्शन करने वाले एवं अच्छी प्रकार से सुख प्रदान करने वाले देव हैं। इनका सर्वप्रधान कार्य रात्रि जनित अंधकार को नष्ट करना एवं सभी जीवों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करना है। ये अपने भक्तों की रक्षा करके उनके लिए मनोवांछित फल प्रदान करते हुए उन्हें पाप रहित बना देते हैं। पृथ्वी की आठों दिशाओं, अंतरिक्ष आदि तीन लोकों एवं सात नदियों को सविता देव विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। सविता को प्राण देने वाला देव भी कहा गया है। निवास स्थान: सविता देव का निवास स्थान द्यूलोक है। ऋग्वेद 1:35 के मंत्र संख्या 6 में एक विशेष तथ्य उद्घाटित किया गया है, जिसके अनुसार तीन लोक हैं, जिसमें से दो लोक सविता देव के समीप में स्थित हैं। प्रसिद्ध वेद भाष्यकार आचार्य सायण ने इसका अर्थ द्यूलोक एवं भूलोक किया है, जिसके कारण इन दोनों लोकों का सूर्य द्वारा प्रकाशित होना बतलाया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सवित्री देव का निवास स्थान भले ही द्यूलोक है, परंतु वह अपना कार्यस्थल भूलोक को ही बनाए हैं। मानव हित कारिणी चंद्र नक्षत्र आदि ज्योतियां एवं जल सवित्री लोक में ही सविता के आधार पर स्थित हैं। प्राकृतिक आधार: सविता देव की को सूर्य के साथ समीकृत किया गया है। वास्तव में उषः काल एवं सूर्योदय काल के मध्य सविता का आगमन होता है। प्रकाशित करने का कार्य सूर्य की सर्वप्रमुख विशेषता है, अतः सवित्री को भी सूर्य मान लिया गया है। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में सूर्य और सविता एक ही देवता के रूप में पुकारे गए हैं। यद्यपि अनेक मंत्रों में सविता को सूर्य से पृथक माना गया है, जैसे अपामी वाम बाधते वेति सूर्यमभि कृष्णेन रजसा द्यामृणोति। उपर्युक्त तथ्य पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सविता सूर्य का ही एक विशिष्ट अभिधान है, क्योंकि सूर्य ही विश्व के महान प्रेरक हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों को अपने महान आगमन के द्वारा प्रेरणा प्रदान करते हैं। सविता सूर्य की प्रेरक शक्ति के रूप में भी प्रस्तुत हुए हैं, अतः स्पष्ट होता है कि सूर्य ही अपने पूर्ण रूपेण उदय के पूर्व इस संज्ञा को प्राप्त करते हुए लोक प्रेरक बन जाते हैं। निरुक्तकार यास्क का स्पष्ट कथन है, सविता सर्वस्य प्रसविता। देवों में स्थान: वैदिक देवताओं में सविता देव उपासना की दृष्टि से अपना अद्वितीय महत्व रखते हैं। ऋग्वेद के अन्य किसी भी देवता की उपासना इतनी श्रद्धा और भक्ति से नहीं हो सकी है। वैदिक ऋषियों ने बुद्धि की प्रेरक शक्ति के रूप में एक अति शक्तिशाली मंत्र का दर्शन किया है, जैसे गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। यह गायत्री मंत्र पूज्य सविता देव की स्तुति रूप में है, जिसमें सविता देव की शक्ति का आह्वान बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज इस वैज्ञानिक युग में भी सविता देव के इस मंत्र की उपासना करके अनेकानेक भक्त अपना एवं जगत का कल्याण कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस मंत्र की रहस्यात्मिका शक्ति के अनुसंधान में संलग्न होकर इसके ऊपर श्रद्धायुक्त बना हुआ है। विश्वे देवा: ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 79वां सूक्त विश्व देवा सूक्त है। 89वां सूक्त विश्व देवा सूक्त है। इसमें अनेक देवताओं की एक साथ स्तुति की गई है। यह सूक्त यजुर्वेद संहिता में भी उपलब्ध होता है। प्रत्येक शुभ कार्य में इस सूक्त के पाठ का विधान पारंपरिक कर्म कांड में है। जब किसी सूक्त में एक ही साथ अनेक देवताओं की स्तुति की जाती है, तो उस सूक्त को विश्व देवा सूक्त का अभिधान प्राप्त होता है। पार्थित विषय: सूक्त के प्रथम मंत्र द्वारा ऋषि सभी ओर से कल्याणकारी शक्तियों को अपने समीप पहुँचाने की कामना करता है तथा देवताओं द्वारा सदैव अपनी रक्षा की इच्छा करता है। द्वितीय मंत्र में देवताओं के साथ मैत्री भाव एवं देवताओं द्वारा अपनी आयु की वृद्धि की कामना की गई है। भग, मित्र, अदिति, मरुदगण, अर्यमन, वरुण, सोम एवं दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन तृतीय मंत्र द्वारा किया गया है। चतुर्थ मंत्र में दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा सुख कर भैषज्य लाभ की इच्छा तथा छठे मंत्र द्वारा इंद्र वृद्ध श्रवा पूषा ताक्ष एवं बृहस्पति आदि देवों से अपने कल्याणार्थ प्रार्थना की गई है। आठवें मंत्र में कानों से कल्याणकारी बातें सुनने तथा आँखों से कल्याणकारी घटनाएं देखने के लिए प्रार्थना है। इस प्रकार नवम एवं दशम मंत्रों द्वारा क्रमशः जीवन के 100 वर्षों की अक्षुण्णता के लिए प्रार्थना एवं एक ही अदिति की अनेक रूपता का प्रतिपादन किया गया है। विश्वे देवा में स्तुत देवता अग्नि वायु इंद्र बृहस्पति पूषा मित्र भग वरुण विष्णु सविता दक्ष अरेमा सोम त्वष्टा देवा पृथ्वी चंद्रमा इंद्राग्नि मित्रा वरुण इंद्रावरुण इंद्र विष्णु इंद्रा मरुत रुद्रगण आदित्यगण मरुदगण वशुगण पृथ्वी सिंधु सरस्वती पृष्णी पर्जन्य गायें दिशाएं क्षेत्रपति धरता अप समुद्र अहिर्बुद्ध बुद्ध्य अज एक पाद बृहदिवादेवी अश्विनी कुमार वृद्धश्रवा एवं अदिति। विश्वे देवा सूक्त का महत्व। वैदिक कर्मकांड से संबंधित प्रत्येक कर्म में इस सूक्त के पाठ की व्यवस्था है। कार्य की निर्विघ्न समाप्ति एवं वांछित सफलता की प्राप्ति के लिए इस सूक्त का पाठ नितांत स्पृहणीय माना जाता है। विष्णु देवता के स्तवन में संपूर्ण ऋग्वेद संहिता में मात्र 5 सूक्त प्राप्त होते हैं। संख्या की दृष्टि से तो ये सूक्त अत्यल्प हैं, परंतु महत्ता की दृष्टि से सूक्त एक महान देव है। विष धातु से उत्पन्न विष्णु शब्द का अर्थ है गतिशील या व्यापनशील देव। विष्णु देवता से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार हैं। स्वरूप, वेदों में विष्णु देवता के स्वरूप के संबंध में विशेष तथ्यों की उपलब्धि नहीं हो पाती। कतिपय स्थलों पर विष्णु को युवक एवं विशाल शरीरधारी देव के रूप में वर्णित किया गया है। विष्णु को भयंकर दुर्गम स्थानों में भ्रमण करने वाला, पर्वत पर निवास करने वाला भी कहा गया है। बलशाली, तीव्र गति वाला, कामनाओं की पूर्ति करने वाला इत्यादि विशेषण विष्णु के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। कार्य, विष्णु ने अपने 3 डगों से पृथ्वी संबंधी लोगों को नाप लिया है। उसके 3 पाद न्यास विश्व की सृष्टि, उसके स्थापन एवं धारण करने के साथ ही साथ आश्रित जनों का पालन पोषण भी करते हैं। जो लोग विष्णु की स्तुति करते हैं उनका वह सर्वविध कल्याण करता है। वह 3 लोकों को अकेले ही धारण करता है। विष्णु को वाणी में निवास करने वाला भी कहा गया है। विष्णु को परोपकारी, प्रचुर धन का दान करने वाला, उदार, सबका रक्षक एवं विश्व का भरण पोषण करने वाला देवता भी कहा गया है। इंद्र ने विष्णु के साथ मिलकर वृत्र का वध किया था। निवास स्थान, जिस स्थान पर पुण्यात्मा जन निवास करते हैं तथा जहाँ मधुमय उत्स अथवा सरोवर है, वही विष्णु का निवास स्थल है। देवता लोग उस स्थान पर विहार करते हैं। यह उच्चतम पद तेजोमय होकर नीचे की ओर अत्यधिक प्रकाशित होता रहता है। यही पर द्रुतगामी गायें या किरणें रहती हैं। उपासक गण विष्णु के उसी परम लोक में जाने की कामना करते रहते हैं। प्राकृतिक आधार, विष्णु का संबंध किस प्राकृतिक उपादान के साथ है, इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मूलतः वे सूर्य से ही समाकृत किए गए हैं। अधिकांश विद्वान विष्णु को सूर्यवाची मानकर उदयकाल से मध्यकाल तक उनका प्रथम पाद प्रक्षेप, मध्यकाल से अस्तकाल तक द्वितीय पाद प्रक्षेप एवं अस्तकाल से अग्रिम उदयकाल तक तृतीय मानते हैं। इन्हीं पूर्वोक्त 2 पाद प्रक्षेपों को दृष्टिगोचर एवं तृतीय को अगोचर कहा गया है। इस तृतीय पाद प्रक्षेप तक पक्षियों का भी पहुँच सकना असंभव है। वैदिक ऋषि उन्मुक्त प्रकृति में सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक रूप में सूर्य को ही देखते थे, अतः शक्तिशाली देवताओं को सूर्य के साथ समीकृत कर दिया करते थे। विष्णु भी इसकी अपवाद नहीं कहे जा सकते। रुद्र, ऋग्वेद में रुद्र देवता का वर्णन बहुत अधिक नहीं किया गया है। उसका वर्णन कुछ ही ऋचाओं में है, तथापि रुद्र को अत्यधिक शक्तिशाली एवं भयंकर रूप में चित्रित किया गया है। स्वरूप रुद्र के बाह्य रूप का मनोहारी वर्णन मिलता है। उसके सुंदर होठ हैं, जुल्फों वाले केश हैं, रंग भूरा है, आकृति मसृण और कांतिमान है। रुद्र मध्यकालीन सूर्य के समान चमकता है। वह सोने के आभूषणों को धारण करता है और गले में चमकदार निष्ठ अथवा हार को धारण करता है। उसके साथ विशेष आयुध है, वह वज्र को धारण करता है तथा बिजली की सी चमक वाले बाणों को अपने पास रखता है। ऋग्वेद में रुद्र मरुतों का पिता एवं स्वामी कहा गया है। रुद्र ने इनको पृष्णी नाम की गौओं के थनों से उत्पन्न किया था। जगत का विनाश करने में यह रुद्र शुकर के तुल्य है। यह शुकर लाल रंग का स्वर्ग का शुकर है और उसको अरुष कहते हैं। वह शुकर विशाल काय है। कार्य, रुद्र शक्तिशालियों से भी अधिक शक्तिशाली है, शीघ्रगामी है और फुर्तीला है। कोई देवता उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। वह संसार का स्वामी और पिता है, उदार आशुतोष और शिव है। वह जगत के पापों और पुण्यों का निरीक्षण करता है। ऋचाओं में रुद्र के भयानक बाणों का वर्णन है। उसका क्रोध किसी की परवाह न करने वाला, न बदलने वाला, सहन की न किया जा सकने वाला और विभत्स है। रुद्र को देवों का अधिदेव कहा गया है और प्रार्थना की गई है कि वह हमें न मारे और न हानि पहुंचावे। रुद्र के द्रोह से बचने के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं और यह प्रार्थना की गई है कि वह रुद्र गौओं तथा मनुष्यों को मारने वाले वज्र से हमारी रक्षा करे। रुद्र केवल भयानक और दंड देने वाला नहीं है, अपितु कष्टों से बचाता भी है और दया का दान भी करता है। रुद्र को स्वास्थ्य का देवता भी कहा गया है। उसके पास स्वास्थ्य प्रदान करने की विशेष शक्तियाँ हैं तथा रोगों को दूर करने वाली हजारों औषधियाँ हैं। औषधियों के लिए जलाश एवं जलाश भेषज शब्दों के प्रयोग वैदिक मंत्रों में आते हैं। ऋग्वेद में रुद्र की भौतिक शक्तियों के संबंध में विशेष तो नहीं कहा गया, परंतु प्राकृतिक वर्णनों से वह आधी उठाने वाला समझा जा सकता है। उसका दुखद रूप नर पशु वृक्ष आदि को ध्वंस करने वाली बिजली के समान दिखाई देता है। उसका रूप एक ओर जहाँ कठोर है वही दूसरी ओर कोमल भी है। ऋग्वेद में यद्यपि रुद्र के संबंध में अधिक विस्तृत वर्णन नहीं है और उसको अधिक महत्व नहीं मिला, तथापि उत्तर काल में वह आर्यों के प्रमुखतम देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यजुर्वेद के काल में ही उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त होनी प्रारंभ हो गई थी। रुद्राष्टाध्यायी और यजुर्वेद में रुद्र को शत्रुओं का प्रतिकार करने में अनुपम सामर्थ्य से युक्त कहा गया है। एक ओर जहाँ वह शत्रुओं और द्रोहियों को रुलाने वाला है, वही दूसरी ओर शांति का अग्रदूत है। इंद्र ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति स्वतंत्र रूप से की गई है तथा 50 सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ भी उसे स्तुत किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद का लगभग चतुर्थांश इंद्र के ही गुणगानों से भरा हुआ है। जिस प्रकार अग्नि और सूर्य क्रमशः पृथ्वीलोक एवं द्युलोक के अधिपति हैं, उसी प्रकार इंद्र अंतरिक्ष लोक के अधिपति हैं। इंद्र देवता की कतिपय विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्वरूप, ऋग्वेद में इंद्र का चित्रण मानवाकृति रूप में किया गया है। उसके विशाल शरीर, शीर्ष भुजाओं एवं बड़े उदर का उल्लेख अनेक बार किया गया है। उसके जबड़ों एवं अधरों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। वह भूरे वर्ण का देव है, जहाँ तक कि उसके केश एवं दाढ़ी भी भूरे वर्ण के ही हैं। उसका मुख सुंदर है, उसकी भुजाएं भी वज्रवत पुष्ट एवं कठोर हैं। वह सात रश्मियों से युक्त है। जन्म एवं देवताओं से संबंध, ऋग्वेद के संपूर्ण 2 सूक्तों में इंद्र के जन्म के संबंध में अनेक तथ्यों को बतलाया गया है। निरृति तथा शवसी नामक गाय को उसकी माँ कहा गया है। उनके पिता द्यों या त्वष्टा हैं। एक स्थल पर इंद्र को सोम से उत्पन्न कहा गया है। अग्नि और पूषण इनके भाई हैं। इंद्राणी पत्नी और मरुदगण मित्र तथा सहायक हैं। इंद्र को वरुण, वायु, सोम, बृहस्पति, पूषण और विष्णु के साथ युग्म रूप में स्तुत किया गया है। कार्य, इंद्र ने जन्म लेते ही समस्त देवताओं को अपने पराक्रम से आक्रांत कर दिया। इसके पौरुष की महिमा से द्युलोक एवं पृथ्वीलोक कांप गए। इन आर्यों को अनार्यों के विरुद्ध युद्ध में सहायता प्रदान करके विजयी बनाता है, इसलिए वह अपने अपूजकों और विरोधियों का वध करता है। इंद्र अपने भक्तों की रक्षा एवं सहायता करता है। इंद्र ने अस्थिर पृथ्वी को स्थैर्य प्रदान किया। इधर उधर उड़ते हुए पर्वतों का पंख छेदन करके उन्हें तत्त्व स्थानों पर प्रस्थापित किया। उसने द्युलोक को भी स्तब्ध किया है। इस प्रकार उसने अंतरिक्ष का भी वर्ण का भी निर्माण किया है। 2 मेघों या पत्थरों के मध्य से अग्नि को भी इंद्र ने ही उत्पन्न किया है। उसने ही सूर्य एवं उषस को भी उत्पन्न किया है। उसने बल का प्रदर्शन करते हुए अहि को मारकर 7 नदियों को प्रवाहित होने के लिए उन्मुक्त किया है। इंद्र ने भयवशात पर्वतों में छिपे हुए शंबर नामक असुर को 40वें वर्ष में ढूंढ निकाला और उसका वध कर दिया। इंद्र ने बल नामक राक्षस के बाणे से गायों को बाहर निकाला था। स्वर्ग में चढ़ते हुए रौहिण नामक असुर को भी इंद्र ने ही अपने शरु नामक वज्र से मार डाला था। इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वृत्रवध है। वृत्रवध की गाथाओं से इंद्र सूक्त भरे पड़े हैं। इस गाथा के वर्णन से ऋषि अघाते नहीं हैं। इंद्र ने सोमरस का पान करने का तो मानो व्रत ही ले लिया है। सोमलता को पीसने, निचोड़ने एवं पकाने वाले की वह रक्षा करता है। सोमरस के पानकर्ता के रूप में इंद्र वैदिक देवताओं में अपना उपमान नहीं रखता। अचल या अनश्वर पदार्थों को चल या नश्वर बनाना भी इंद्र के ही वश में है। इसलिए तो योद्धागण अपनी विजय के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं। प्राकृतिक आधार, अनेक वैदिक विद्वान इंद्र को प्रकाश का देवता मानकर उसको सूर्य के साथ समीकृत करते हैं। लोकमान्य तिलक वृत्र को हिम का प्रतीक मानते हैं, जिसे इंद्र अर्थात सूर्य नष्ट करता है। उनके अनुसार आर्यों के आदि देश उत्तर ध्रुव में शीत ऋतु में सभी नदियों की धाराएं जल के अभाव के कारण रुक जाती हैं। वसंत का सूर्य ही बर्फों को पिघलाकर जल धाराओं को प्रवाहित करता है। भारतीय परंपरा भी बादलों के पारस्परिक टकराव से उत्पन्न प्रकाश को ही इंद्र का वज्र स्वीकार करती है। चमक के कारण बादलों का क्षरण होता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बादल इंद्र के वज्र से आहत होकर आंसू गिराते हैं। ये बादल ही वृत्र हैं। आवरणार्थक वृ धातु से निष्पन्न वृत्र शब्द का अर्थ है आवरक या आच्छादक। वृत्र को मेघ मानने पर भी इंद्र की सूर्य रूपता स्पष्टता बनी रहती है। अनेक स्थलों पर मरुतों की सहायता से इंद्र द्वारा वृत्रबद्ध होने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इस कथन से भी यही स्पष्ट होता है कि सूर्य की गर्मी से मरुत गर्म वायु गर्म होकर ऊपर उठता है, जिससे वर्षा होती है। वेदों में गौह गावह इत्यादि शब्दों का अर्थ किरणें भी हैं। सभी दिशाओं में इंद्र अर्थात सूर्य की ही किरणें व्याप्त हो रही हैं। पृथ्वी एवं द्यूलोक इंद्र के प्रति झुक जाते हैं। इस कथन का भी तात्पर्य यही हो सकता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तथा द्यूलोक भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निसंदेह कहा जा सकता है कि वैदिक देवताओं में इंद्र का स्थान सर्वोपरि है। इसलिए परवर्ती साहित्य में इंद्र को देवताओं का राजा माना गया है तथा अनेक पौराणिक ग्रंथों में इंद्र वर्षा कराने वाले देवता के रूप में विख्यात है।